नमस्कार भारत, 27 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। भारतीय वायुसेना के हमले को लेकर बोले पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जानते हैं अपनी हिफाजत करना।
We know how to defend ourselves, ladies and gentlemen.
लेकिन क्या भारत को जवाब देने की स्थिति में है पाकिस्तान?
So if Pakistan feels that it must respond, I mean, we could expect something along the line of control in Kashmir.
भारत पाक नियंत्रण रेखा पर बढ़ा तनाव, संयुक्त राष्ट्र ने की संयम की अपील।
Urgent appeal to both the governments of India and the government of Pakistan to exercise maximum restraint.
और आज से वियतनाम में ट्रंप और किम जोंग उनकी दो दिवसीय मुलाकात। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। पाकिस्तान की सेना ने धमकी दी है कि उसके हवाई क्षेत्र में भारतीय लड़ाकू विमानों के घुसपैठ का ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका भारत को अनुमान भी नहीं है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत को चौंकने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने चरमपंथियों के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। भारत ने कहा है कि इस कैंप में आत्मघाती हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों में जैसे मोहम्मद के कई चरमपंथियों के मारे जाने का दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों ने भारतीय विमानों को लौटने के लिए मजबूर कर दिया था और इस हमले में कोई जनहानि नहीं हुई है। उधर इस्लामाबाद में संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान सेना देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा,
दिस इज अ मैसेज बियॉन्ड दिस ऑडियंस। My armed forces have stopped terrorism. My armed forces are the most experienced as far as terrorism is concerned.
मेरी सशस्त्र सेनाओं ने आतंकवाद पर रोक लगाई। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मेरी सेनाएं इस मामले में सबसे अधिक अनुभवी हैं। मेरी सशस्त्र सेनाएं दुनिया को बता सकती हैं कि इससे कैसे निपटा जाता है और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन कुर्बान किए हैं। इसलिए इस क्षेत्र में और भी दुनिया में कहीं भी कोई यह नहीं मान सकता कि वो किसी देश को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमारी सेनाएं हमें सुरक्षा देती हैं और हम जानते हैं कि देश की रक्षा कैसे करनी है। ये थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के शब्द। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एक चरमपंथी संगठन के शिविर पर हमले के बाद कश्मीर से लगती नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे पर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कल शाम को कोटली सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों की गोलाबारी में पाकिस्तान के 4 लोगों की मौत होने की खबर है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ बैठक करने के लिए वियतनाम पहुंच गए हैं। पिछले साल सिंगापुर सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी बैठक है। किम जोंग उन पहले ही ट्रेन और कार से हनोई पहुंच गए हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में दोनों नेता कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु खतरे को कम करने पर हुई प्रगति पर बात करेंगे। रूस की एक सैन्य अदालत ने एक पूर्व जासूस और साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार ये लोग रूस से जुड़े हैकिंग दस्तावेजों समेत संवेदनशील सूचनाएं अमरीका को दे रहे थे। पूर्व जासूस को 22 साल और साइबर एक्सपर्ट को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वेनेजुएला में अमेरिका के विशेष राजदूत एलियट अब्राम ने कहा है कि उनका देश वेनेजुएला पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका के आग्रह पर बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा,
We announced some sanctions yesterday. There will be more. There will be more this week.
हमने कल भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इस हफ्ते और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे और अगले हफ्ते कुछ और। प्रतिबंध के दायरे में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो मौजूदा सरकार में अहम पदों पर हैं और वित्तीय मामले देखते हैं। ये थे वेनेजुएला में अमेरिका के विशेष राजदूत एलियट अब्राम के शब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन सीनेट के सामने गवाही के दौरान ट्रंप पर आपराधिक आचरण का आरोप लगा सकते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कोहेन ट्रंप पर टैक्स जालसाजी और नस्लीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कोहेन को गवाही के लिए क्यों बुलाया है जबकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि गवाही के लिए उन्हें क्यों बुलाया है जबकि वो संसद के सामने झूठ बोलने के लिए माफी मांग चुके हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, दुनिया के कई देश इस दिन को मोहब्बत के पर्व के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इस साल इस दिन से भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच बनी दरार कुछ और चौड़ी हो गई। 14 फरवरी को भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला हुआ। इसमें 40 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली और कल भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया। भारतीय वायुसेना के विमानों के पाकिस्तान में दाखिल होने की पहली खबर पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गाफूर ने दी। हालांकि उन्होंने भारतीय सेना के दावों पर सवाल उठाए और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सुर भी कुछ ऐसे ही थे। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद में कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके देश की सेना मुल्क की हिफाजत कर सकती है।
वी आर अ पीपल प्रोटेक्टेड बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी कैन वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। वी डोंट हैव एनी बैड इंटेंशन टू एनी अदर कंट्री।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे थे कि किसी दूसरे मुल्क के लिए हमारे कोई गलत इरादे नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि खुद की हिफाजत कैसे करनी है और इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का दावा कर रहा है, वो चौंकाने की बात भी कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना भारत को जवाब देने की स्थिति में है? हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
भारतीय विमानों के पाकिस्तान में घुसकर बम गिराने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि वो जवाब देगी और भारत को उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तानी सेना कोई ठोस कार्रवाई करेगी? वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तानी सुरक्षा हालातों की गहरी समझ रखने वाले रहीमुल्लाह यूसुफजई का कहना है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया बहुत बड़ी नहीं होगी।
मेरे ख्याल में अगर ज्यादा नुकसान होता तो पाकिस्तानी सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता, दबाव होता कि वो भी कार्रवाई करें, लेकिन चूंकि कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ और कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं लग रही, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा वो भी कोई इतना बड़ा नहीं होगा और शायद जल्दी भी ना हो।
यूसुफजई कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो एयर स्ट्राइक कर सकता है।
और फिर ये है कि मेरे ख्याल में दोनों के पास एक ही ऑप्शन है एयर स्ट्राइक का। भारत ने 2016 में भी एयर स्ट्राइक का दावा किया, आज फिर वो कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान भी यही कुछ कर सकता है कि ये भी कहीं जाकर एयर स्ट्राइक करे, कोई बमबारी करे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी।
वहीं दक्षिण एशिया के सुरक्षा मामलों पर नजदीकी नजर रखने वाली अमरीकी प्रोफेसर क्रिस्टीना फेयर कहती हैं,
आई हैव बीन एनकरेज्ड बाय पाकिस्तानी डिम्यूरल्स दैट That in fact nothing happened, that the PAF scrambled, chased them away.
पाकिस्तान ने कहा है कि कुछ नहीं हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया और भारतीय विमानों को खदेड़ दिया और वो जल्दबाजी में अपना पेलोड गिराकर भागे हैं। बयानबाजी भरा ये रवैया अपनाकर पाकिस्तान वास्तव में ये कहना चाहता है कि इतना साहसिक जवाब देने की जरूरत नहीं है जितना साहसिक हमला करने का भारत ने दावा किया है। भारत के 12 मिराज विमानों ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर बम गिराए हैं। ये वास्तव में एक बेहद साहसी हमला है और पाकिस्तानी वायुसेना की दिक्कत ये है कि उसके पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है। क्रिस्टीन का मानना है कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बेहद ज्यादा है, ऐसे में बहुत संभव है कि वो कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन अगर उसे कुछ करना ही होगा तो वो नियंत्रण रेखा पर बमबारी कर सकता है।
Pakistan feels that it must respond. I mean, we could expect something along the line of control in Kashmir.
ऐसे में अगर पाकिस्तान ये तय करता है कि जवाब दिया जाना जरूरी है तो बहुत संभव है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के करीबी कश्मीर में कुछ करे, या फिर जैसा कि कुछ साल पहले उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुआ था वैसे ही गोला बारूद दागे। लेकिन जिस तरह का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जवाबी हवाई हमला नहीं करेगा। हम इस विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसे खारिज कर रही हूं क्योंकि पाकिस्तान भारतीय हमले को बहुत कम करके पेश कर रहा है। पाकिस्तान क्या करेगा ये तो पाकिस्तान की सेना ही तय करेगी, लेकिन फिलहाल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बेहद बढ़ गया है और लोग डरे हुए हैं। अब देखना यह है कि डर और तनाव का ये माहौल कितने दिन और चलेगा। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान में बैठकों का दौर जारी है, सेना और सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई को लेकर बयान आ रहे हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान क्या कदम उठाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास अब विकल्प क्या है। बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी ने यही सवाल किया जॉर्डन और कतर में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके आरिफ कमाल से।
पाकिस्तान के सामने ऑप्शन रिस्पॉन्ड करने के तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, फौजी जुबान के ऊपर तो मेरा इसको बयान करना मुमकिन नहीं है, मेरी समझ उतनी ज्यादा नहीं हो सकती जितना किसी सामरिक जर्नल की हो सकती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ से जो रिस्पांस होगा वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फौजी नोयत ही का हो, उसमें मेरे अपने ख्याल में इस इलाके को शायद वो खोल दें। मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में बैठा हूँ इसलिए मैं बहुत एतमाद के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस इलाके के ऊपर जिसका जिक्र है जहाँ कहते हैं टारगेट हुआ उसको कोई बाइज़ इम्कान नहीं होगा कि उसको आज ही खोल दे प्रेस के लिए, इंटरनेशनल प्रेस के लिए, और आप फ्लाई करके चले जाए देखने के लिए। अगर तो प्रेस ले जाई जा रही है तो इसका मतलब यह है कि वो क्लेम्स जो के दिल्ली से हो रहे हैं उनको इतनी अहमियत देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अगर तो बम्बारमेंट है, एक इंस्टॉलेशन तबाह हुई है तो नजर आ जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये उसका जो असर इलेक्शन कैंपेन पे था काउंटर प्रोडक्टिव है।
अगर हिंदुस्तान ने जैसा कि कहा है कि हिंदुस्तानी तैयारे वहां पर जंगी तैयारे गए, एयरक्राफ्ट गए और बॉम्ब मार के आ गए हैं, इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान क्या नजरअंदाज कर सकता है, नजरअंदाज करेगा पाकिस्तान?
नहीं करेगा, वो तो रिस्पॉन्ड भी करेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा, लेकिन मुझे इस पे क्लैरिटी नहीं है कि रिस्पॉन्स से मुराद सिर्फ फौजी रिस्पॉन्स है या फौजी और सफारती का मिलाप है
ना। अच्छा, वो पाकिस्तान का मिलाप है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप पाकिस्तान को जिस तरह जानते हैं, क्या करेगा पाकिस्तान वो तो सबके सामने आ ही जाएगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन क्या, मिलिट्री ऑप्शन कोई ऑप्शन है प्रैक्टिकली? क्या ये बात आपको हजम होती है कि कोई मिलिट्री ऑप्शन हो सकता है?
मेरे ख्याल में तो ये हजम अगर होनी होती तो ये उस तरह का कैटेगोरिकल स्टेटमेंट पहले ना आता जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मैं यकीनन एक चीज कह सकता हूँ कि कोई इसका जो रद्द अमल है तो वो रद्द अमल फौजी अगर इजहार है उसका तो वो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी के अंदर नहीं होगा। वो अब मैं नहीं कह सकता कि आप आरएसएस के हिमाचल में कैंप्स को टारगेट कर लें, मैं तो ये तजवीज नहीं करना चाहूंगा। मैं तो अमन चाहता हूँ और मेरे ख्याल में जंग ना इंडिया को सूट करती है ना पाकिस्तान को करती है, ये कहना कि ये इतने सुपीरियर है और इतनी हिम्मत है और इतनी सलाहियत है बर्दाश्त की, आई थिंक सारे आर्गुमेंट जो है ये ऐसी है 50 साल पीछे तो हर एक को जाना होगा।
लेकिन साहब ये हिंदुस्तान का ये कहना है कि हिंदुस्तान का सब्र का प्याला लबरेज हुआ जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, बम्बई में 26/11 का हमला हुआ, फिर अभी पुलवामा में हुआ, बीच में पठानकोट में हुआ, ये सब कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान की अथॉरिटीज का कहना है,
चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट है चाहे नॉन एक्सट्रीमिस्ट है, अगर नेशनल लिबरेशन की वॉर है तो हम उसको अपोज करने का कोई गुंजाइश नहीं है।
क्या उसके बदले में कोई नॉन स्टेट एक्टर्स को हिंदुस्तान भेज करके हमले करवाना अगर ये पॉलिसी है पाकिस्तान की तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हिंदुस्तान जवाब तो देगा उसको।
पहली बात तो ये कि ये जो है ये तो अब वो पुराने जमाने की स्टोरी है कि कह रहा है कि पाकिस्तान से लोग गए, इन एनी केस दिस इज अ मैस अपसेट, तो उस मैस अपसेट को आप पाकिस्तान के ऊपर टारगेट करके तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते।
ये थे पाकिस्तान के पूर्व राजदूत आरिफ कमाल। वहीं भारत में भी बैठकों का दौर जारी है, कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इस बैठक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या कहा वो सुनिए।
मुझे खुशी है कि सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में पहले भारतीय वायुसेना को बधाई दी, फिर सरकार द्वारा किए गए किसी भी आतंक विरोधी कार्रवाई के लिए हमेशा समर्थन देने का आश्वासन दिलाया और पक्ष और विपक्ष का भेद किए बिना एकजुटता का प्रदर्शन किया।
सुषमा स्वराज बता रही थी कि सभी दल सरकार के साथ हैं। वायुसेना की कार्रवाई की खबर आने के बाद से भारत के कई हिस्सों से जश्न मनाए जाने की खबरें भी मिली। हालांकि नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ गया है, नियंत्रण रेखा पर कई जगह दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी की खबरें मिली है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं भारत ने 5 सैनिकों के घायल होने का दावा किया है। कश्मीर घाटी में कल भी डर और आशंका का माहौल था, वहां की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
जब ये खबर आई कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश मोहम्मद के कथित ठिकानों पर बमबारी की है तो पिछले दो सप्ताह से फैली सनसनी ने अफरा तफरी का रूप धार लिया। एटीएम्स और पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गईं और सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग भयभीत हो गए। घाटी में स्थित सभी सैन्य और अर्धसैन्य ठिकानों के गिरद चौकसी को बढ़ाया गया है और सड़कों पर वाहनों की तलाशी कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। कश्मीर के सभी वर्गों का मानना है कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा और दोनों देशों को बातचीत द्वारा समस्याओं का समाधान करना होगा।
अगर खुदा न करे जंग छिड़ गई तो बहुत से परेशानियां हो जाएगी, बहुत से मुश्किलात उससे हो जाएंगे। जंग से तो कोई सूरत कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के आवाम जो है 1947 से पीछे आ रहे हैं इस चक्की में, और हालिया दिनों में जो ये लखतपुरा में अटैक हुआ इसकी वजह से मुश्किलातों में और ज़्यादा इजाफा हुआ है।
पर उनको तो हमारा मामला मालूम है, इफ दे सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम जे एंड के थिंग्स विल बी ऑलराइट। ये तो फ्रेंडली बन सकते हैं, ये शायद मेरे अंदाज में तरक्की भी कर सकते हैं, तो बेहतर बात है कि अगर वो बातचीत कर लेते अच्छी बात ही वही होगा, वही हाल है। ये जो जंग वो किसी चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी से और इमरान खान से, वो कश्मीर की खुशहाली के लिए कदम उठाए और एक ही टेबल पर आके बात करें।
गौरतलब है 14 फरवरी को सीआरपीएफ पर जैश मोहम्मद के आत्मघाती बमबार ने हमला किया जिसमें 40 से अधिक सुरक्षा कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना सतर्क कर दी गई और चरमपंथियों के विरुद्ध ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। पिछले दिनों प्रशासन ने खाने पीने की चीजों और दवाइयों को स्टॉक करने की घोषणा कर डाली तो लोगों को लगा कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इन आशंकाओं में उस वक्त बढ़ोतरी हुई जब एयर स्ट्राइक की खबर सामने आई। इसी बीच भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कर्मचारियों ने अलगाववादी नेताओं मीरवज उमर फारूक और यासीन मलिक के घरों पर छापे मारे, जिसके बाद श्रीनगर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। एनआईए ने पहले ही शब्बीर शाह और नईम खान समेत कई अलगाववादियों को आतंकी संगठनों की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
और इस बीच आज के अखबार भी आ चुके हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। अखबारों ने इस खबर को किस तरह से कवर किया है ये बताने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एहतेशाम उल हक और स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश उप्रेती। पहले एहतेशाम, आपसे जानेंगे कि पाकिस्तान के अखबारों ने क्या सुर्खियां लगाई हैं।
देखिए जी, मेरे सामने बड़े बड़े अखबार पड़े हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार जो है डेली डॉन, इनकी हेडलाइन है टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर अवर रिस्पॉन्स, आईएसपीआर डीजी टिपांग्स न्यू दिल्ली क्लेम ऑन एलओसी। साथ ही दूसरी खबर इनकी है ओआईसी कंडेम्स इंडियन इनकर्शन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अर्जेस बोथ साइड टू रिस्ट्रेन। फिर अंग्रेजी का अखबार और है जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये लिखता है इट्स योर टर्न टू गेट रेडी फॉर सरप्राइज, पाकिस्तान आर्मी टेल्स इंडिया। बिजनेस रिकॉर्डर अंग्रेजी का दूसरा अखबार ये लिखता है फॉरन मिनिस्टर इनफॉर्म यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ऑफ इंडियन एलओसी वायलेशन। साथ ही दूसरी खबर है आईएसपीआर डीजी रिजेक्ट्स क्लेम ऑफ एयर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान टेरिटरी। फिर अंग्रेजी का दूसरा अखबार है जी द न्यूज, ये लिखता है जी एलओसी वायलेशंस बाय इंडियन वॉर प्लेन्स, चाइना अर्जेस पाकिस्तान इंडिया टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट्स। फिर उर्दू का बड़ा अखबार है जी, सबसे बड़ा अखबार डेली जंग, वो लिखता है पाकिस्तान भारत को बरवक्त जवाब देगा। फिर इस तरह साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी का भी बयान इस तरह का छपा हुआ है। फिर दूसरी खबर यही दे रहे हैं भारतीय दरअंदाजी पर अफवाह में मसला का रद्द अमल, सूरतेहाल मजीद खराब होने से बचाया जाए, जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये भी साथ लिख रहे हैं। फिर
जी वहाँ जवाब देने की बात हो रही है, भारत के दावे खारिज किए जा रहे हैं। इस बीच में दिल्ली के अखबार देख चुके हैं दिनेश उप्रेती, मैं चाहूंगा एहतेशाम आप उनकी सुर्खियां भी सुने।
जैसा कि वासल जी आपने बताया कि भारत जो है वायुसेना के हमले का दावा कर रहा है और सभी अखबार जो है इसकी सुर्खियों से भरे पड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस का शीर्षक है इंडिया स्ट्राइक्स टेरर डीप इन पाक। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है टेरर अटैक्ड। द हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है इस खबर में ये कहा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में ट्रेनिंग सेंटर पर जो हमला हुआ है उसकी टाइमिंग की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष भी इसमें शामिल थे।
टाइम्स इनसाइड स्टोरी की बात की जा रही है,
इनसाइड स्टोरी की बात की जा रही है। नवभारत टाइम्स ने सुषमा स्वराज के हवाले से लिखा है कि सैनिक नहीं थे निशाना, आतंकियों पर की गई कार्रवाई। ये दलील दी गई है भारत की तरफ से कि फिर से आत्मघाती हमले की फिराक में था जैसे मोहम्मद, इसीलिए उसके ठिकाने को
जी। एहतेशाम उल हक, हम आपसे जानना चाहेंगे जो भारत की ये दलील है उसको लेकर भी क्या पाकिस्तान के अखबारों ने कुछ कहा है, लिखा है?
देखिए जी, जितने अखबार हैं जो एडिटोरियल हैं, आर्टिकल हैं, वो सब भारत के इस دعوے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب تو اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, جو جہاز جاتے ہیں, وار پلین جاتے ہیں, وہ تصویریں بھی لے کے آتے ہیں. ایک بھی تصویر وہ کہتے ہیں کہیں بتا دیں کیا گن گن کے. اوپر سے پائلٹ نے بتایا کہ 350 لوگ مارے گئے ہیں, اور جو جگہ بتائی گئی وہ بھی جگہ نہیں ہے. اور آج وہ پاکستان جو ہے نا ڈپلومیٹک کمیونٹی کو لوگوں کو لے کے وہاں جائے گا. کل ہی لے کے جانا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موسم ٹھیک نہیں تھا. اسی طرح اخبار نویس جائیں گے, وہ کہتے ہیں جیسے پہلے انڈیا کا مذاق بنا تھا پوری دنیا میں جو انہوں نے کیا تھا اس سے پہلے, کہ جی وہ پاکستان کے اندر جا کے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی, اسی کا جواب وہ کہتے ہیں اب دنیا کو ملے گا. اور اچھی بات وہ یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اخبارات کے ذریعے باہر کی دنیا کو بتایا جا رہا ہے, او آئی سی کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اسی طرح مائک پامپیو کو کانٹیکٹ کیا گیا, پھر یورپین یونین کو کانٹیکٹ کیا گیا. تو یہ اس لحاظ سے حکومت بڑی امید پر امید ہے کہ معاملات ان کے حق میں جائیں گے, اور پورا میڈیا ایک ساتھ کھڑا ہے.
جی میڈیا تو ساتھ کھڑا ہے, لیکن پاکستان کو ساتھ اور کن ملکوں کا مل رہا ہے, کیا اس کے بارے میں اخباروں نے کچھ روشنی ڈالی ہے؟
دیکھیں جی اس حوالے سے چائنا کی طرف سے ہے کہ جی بھرپور سپورٹ دی جائے گی, اسی طرح سے او آئی سی کے کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بڑا بھرپور ریسپانس آیا, خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے, ایران اور ترکی کی طرف سے یہ خبریں چل رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ چائنا کی طرف سے ان سائڈ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو ہر طرح کی امداد دی جائے گی, پاکستان کی مدد کی جائے گی اس کڑے وقت میں. تو اس لحاظ سے وہ جو انڈیا کا کلیم رہا ہے کہ پاکستان کو ہم نے تنہا کر دیا, وہ ٹوٹلی سارے اخبارات ریجیکٹ کر رہے ہیں. لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہندوستان کے لیے مشکلات کا وقت شروع ہو گیا, پاکستان نے بہت کچھ سہ لیا, اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا.
جی یعنی دونوں طرف کے میڈیا نے بھی اپنی اپنی لائنیں لے لی ہیں, اور زیادہ تر خبریں سورسز کے حوالے سے آ رہی ہیں. دنیش شپرے
جی, واسل جی اس میں ایک چیز اور ہے کہ آج چین میں آر آئی سی کی بیٹھک, یعنی کہ روس بھارت اور چین کے ودیش منتریوں کی بیٹھک ہوگی, اور اس میں جو ہے پلوامہ کے جو آتنکوادی چرمپنتھی حملہ ہوا تھا اس میں, اور جیسے محمد کے جو سرگنا ہے مسعود اظہر ان کو لے کے بات چیت ہو سکتی ہے.
جی بہت شکریہ دنیش اپریتی, اور اسلام آباد سے جڑنے کے لیے احتشام الحق.
سنسنی نہیں وشوسنیتا کا دم,
بی بی سی ہندی.
بھارت اور پاکستان کے بیچ بڑھتے تناؤ کو لے کر سنیکت راشٹر فکر مند ہے. سنیکت راشٹر نے دونوں دیشوں سے سیم رکھنے کو کہا ہے. سنیے نیویارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ.
بھارت اور پاکستان سے سنیم برتنے کی اپیل دہراتے ہوئے سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوتیرس کے پروکتا اسٹیفان دوجارک نے پترکاروں سے بریفنگ کے دوران کہا
following the situation very closely and reiterates his urgent appeal to both the governments of India and the government of Pakistan to exercise maximum restraint to ensure that the situation does not further deteriorate.
مہاسچیو سے میں نے بات کی, وہ وہاں کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اور بھارت اور پاکستان دونوں سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ دونوں دیش سنیم برتیں جس سے حالات اور خراب نہ ہوں. سنیکت راشٹر مہاسچیو انتونیو گوتیرس کے پروکتا اسٹیفان دوجارک کے شبد. امریکہ نے ابھی تک بھارت دوارا پاکستان میں استھت آتنکی ٹھکانوں پر حملے کے سلسلے میں کوئی سرکاری بیان نہیں دیا ہے. بھارت کی ودیش منتری سشما سوراج اور پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے الگ الگ امریکہ کے ودیش منتری مائک پومپیو سے فون پر بات کی ہے. دونوں دیشوں نے بالاکوٹ میں بھارتی حملے کے بارے میں امریکہ کو اپنے رخ سے آگاہ کر دیا ہے. امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اتر کوریا کے نیتا کے ساتھ بیٹھک کرنے کے لیے ویتنام میں موجود ہیں, مگر نہ تو امریکی ودیش وبھاگ اور نہ ہی وائٹ ہاؤس سے بھارت دوارا پاکستانی چھیتر میں آتنکی اڈوں پر حملے کے بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہے. لیکن پچھلے ہفتے پلوامہ حملوں پر بولتے ہوئے راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ حالات بہت خطرناک ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ ایسے خطرناک حالات کے سلسلے میں اپنی کوششیں کر رہا ہے.
And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes.
امریکہ اس سے پہلے بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھ جانے کی استھتی میں کوٹنیت کے ذریعے دونوں دیشوں کے بیچ مدھیست کا کردار نبھاتا رہا ہے, لیکن راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنایا ہے اور بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان آتنکی گٹوں کو مدد دینا بند کرے اور دیش کے اندر آتنکیوں کو پناہ دینا بھی بند کرے. پچھلے سال ٹرمپ نے امریکہ کی پاکستان کو دی جانے والی 1.3 ارب ڈالر کی آرتھک مدد روک دی تھی, اور کہا تھا کہ جب تک پاکستان آتنکی گٹوں کو مدد دینا اور پناہ دینا بند نہیں کرتا اس کو امریکی مدد نہیں ملے گی. پاکستان ان آروپوں سے انکار کرتا رہا ہے کہ وہ آتنکی گٹوں کو مدد دیتا ہے یا دیش میں آتنکیوں کو پناہ دی جاتی ہے. 14 فروری کو پلوامہ میں سی آر پی ایف کے قافلے پر آتنکی حملے میں 40 40 سے زیادہ جوان مارے گئے تھے. پاکستان استھت آتنکی گٹ جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی, لیکن سن 71 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ان دونوں میں سے کسی دیش کی وایو سینا کے ویمانوں نے ایل او سی پار کر کے دوسرے دیش میں حملے کیے ہیں. اب پاکستان نے بھی بھارت کو جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے, اور اسی لیے امریکہ سمیت یورپی یونین اور انیہ دیشوں میں پرمانو ہتھیاروں سے لیس بھارت اور پاکستان کے بیچ حالات تیزی سے بگڑنے کے خطرے سے چنتائیں بڑھ گئی ہیں. جانکاروں کے حوالے سے امریکی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح بھارت دوارا پاکستانی چھیتر میں ہوائی حملوں سے دونوں دیشوں کے بیچ حالات تیزی سے بگڑ سکتے ہیں. جانکار کہہ رہے ہیں کہ خاص کر ایسے سمے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کسی تیسرے دیش دوارا مدھیستہ نہ کرنے سے حالات تیزی سے بگڑ سکتے ہیں. سلیم رضوی, نیو یارک.
ادھر امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ ویتنام پہنچ گئے ہیں. آج وہ اتر کوریا کے نیتا کم جونگ ان سے ملیں گے. اس ملاقات کے بارے میں زیادہ جانکاری دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دنیش اپریتی. جی دنیش.
جی واسلے, امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایئر فورس ون ویمان سے ہنوئی پہنچ گئے ہیں, جبکہ کم جونگ ان پہلے ہی اپنی بلٹ پروف ٹرین اور کار میں 4000 کلومیٹر کا سفر طے کر ہنوئی پہنچ چکے ہیں.
دونوں نیتاؤں کے بیچ دوسری ملاقات
ہے سنگاپور سمیلن کے بعد. آج اور کل چلنے والی اس بیٹھک میں دونوں نیتا کوریائی پرائدیپ میں پرمانو خطرے کو کم کرنے پر ہوئی پرگتی پر بات کریں گے.
لیکن اس ملاقات کے لیے ویتنام کو کیوں چنا گیا؟
کئی وجہ ہیں. ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویتنام کبھی امریکہ کا دشمن رہا تھا, لیکن پچھلے کچھ سمے سے ویتنام کے امریکہ اور اتر کوریا دونوں سے مضبوط کوٹنیتک رشتے ہیں. اور دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ویتنام اور اتر کوریا دونوں کمیونسٹ دیش رہے ہیں, اس وجہ سے کم جونگ ان ویتنام پر زیادہ یقین کرتے ہیں. مانا یہ جا رہا ہے کہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کی بہن یو جونگ اور پورو جنرل کم جونگ ان بھی ہنوئی گئے ہیں. یہ دونوں سنگاپور سمیلن میں بھی ان کے ساتھ تھے.
بہت شکریہ دنیش شپریتی. اور اب کھیل کی خبریں.
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں سوریانشی پانڈے. سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں بینگلورو, جہاں پر بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آج دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ہونا ہے. بھارت کی کپتانی جہاں وراٹ کوہلی کر رہے ہیں, تو وہیں آسٹریلیا کی کپتانی ایرن فنچ کر رہے ہیں, اور یہ مقابلہ شام کے 7 بجے شروع ہوگا. پہلے ہوئے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں آسٹریلیا نے بھارت کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا تھا. ایسے میں یہ مقابلہ بھارت کے لیے اہم ہے, اور آج انتراشٹریہ کرکٹ پریشد کے مکھیہ کاریکاریوں کی بیٹھک ہوگی. انگلینڈ اور ویلز میں 30 مئی سے 14 جولائی تک ہونے والے ورلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے یہ بیٹھک اہم مانی جا رہی ہے. پلوامہ حملے کے بعد بھارت کے رخ کو دیکھتے ہوئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی اس میں پاکستان کے خلاف نہیں کھیلنے کا پرستاو رکھے گا. پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو 16 جون کو کھیلنا ہے. پچھلی بار دونوں ٹیمیں دبئی میں آمنے سامنے ہوئی تھی, تب ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو ہرایا تھا. اور کرکٹ کی دنیا سے اگر آپ کو شوٹنگ کی رینج پر لے کر جائیں, تو بھارتی مہیلا نشانے باز منو بھاکر اور ہینا سدھو نے منگلوار کو ISSF وشو کپ میں نراشا جنک پردرشن کیا. منو بھاکر اور ہینا سدھو امیدوں پر کھری نہیں اتری اور 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ کے فائنل کی پاترتا حاصل کرنے میں ناکام رہی. منو بھاکر کوالیفیکیشن میں 573 انکوں کے ساتھ 14 स्थान पर रही, तो वहीं हिना सिद्धू 571 का स्कोर बनाकर 25वें स्थान पर रही. ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के क्रिस्टियन रिड्स ने 35 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता. तो जरा टेनिस के कोर्ट पर नजर डालिए, जहां पर सर्बिया के लालसो जेरे ने कनाडा के फिलिक्स ऑगर को 6-3, 7-5 से हरा कर रियो ओपन जीत लिया. 23 साल के लालसो रियो ओपन में गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे थे. अब फाइनल में सीधे सेटों में मिली जीत से उनकी रैंकिंग में तो सुधार होगा ही, और खिताब जीतने के बाद लालसो अपने माता पिता को याद करके काफी भावुक हो गए.
और चलते चलते मुख्य समाचार दिनेश उप्रेती से.
बीबीसी समाचार. پاکستان کی سینا نے دھمکی دی ہے کہ اس کے ہوائی کھیتر میں بھارتی لڑاکو ویمانوں کے گھسپیٹھ کا ایسا جواب دیا جائے گا جس کا بھارت کو انمان بھی نہیں ہے. پاکستان کے بالا کوٹ میں بھارتی وایو سینا کے ایک چرمپنتھی سنگٹھن کے شیویر پر حملے کے بعد کشمیر سے لگتی نینترن ریکھا پر تناؤ بڑھ گیا ہے. امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اتر کوریا کے نیتا کم جونگ ان کے ساتھ بیٹھک کرنے کے لیے ویتنام پہنچ گئے ہیں. روس کی ایک سینیہ عدالت نے ایک پورو جاسوس اور سائبر سرکشا ایکسپرٹ کو راشدروہ کے آروپ میں جیل بھیج دیا ہے. امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے پورو وکیل مائیکل کوہین سینیٹ کے سامنے گواہی کے دوران ٹرمپ پر آپرادھک آچرن کا آروپ لگا سکتے ہیں. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने अपनी ब्रेक्सिट रणनीति में बदलाव किया है. बीबीसी समाचार.
नमस्कार, भारत में आज इतना ही. स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान. शाम के वक्त 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात. तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ. वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।